जब कोई इंसान इतिहास को या दुनिया की बड़ी घटनाओं को देखता है ना, तो अक्सर मन में एक अजीब सी उम्मीद होती है कि सब कुछ एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट लाइन में चलेगा।
बिल्कुल, एक ऐसा भ्रम होता है जैसे ये ब्रह्मांड कोई गणित का साधारण सा फॉर्मूला हो।
हाँ, जैसे किसी ने एक बटन दबाया और सामने रखी मशीन एक तय तरीके से काम करने लगे। मतलब कारण और परिणाम का एक बहुत ही साफ सुथरा खाचा जहां हर चीज का पहले से अनुमान लगाया जा सके।
लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति प्राचीन धार्मिक ग्रंथों या दर्शन शास्त्र की दुनिया में कदम रखता है ना, तो वो सीधी रेखा अचानक बहुत उलझी हुई और जटिल लगने लगती है। इतिहास कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक बेहद रहस्यमय परिदृश्य है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह धुंधलापन कोई खामी नहीं है, बल्कि यही वो चीज है जो इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल सही कहा। और इसी धुंधलेपन की गहराइयों में गोता लगाने के लिए आज के इस सफर में हम डॉक्टर जॉन ओसवाल द्वारा यशाया मतलब आइजेया के अध्याय 24 और 25 पर दिए गए एक बेहद गहरे लेक्चर का विश्लेषण करने वाले हैं।
जी, और ये बहुत ही प्रभावशाली लेक्चर हैं।
असल में आज के इस गहरे विश्लेषण का हमारा मुख्य मकसद सिर्फ किसी पुरानी किताब को पढ़ना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ इंसान के चुनाव, ईश्वरीय सत्ता जिसे थियोलॉजी में डिवाइन सॉवरेनिटी कहते हैं, और जीवन में इंतजार करने के असली अर्थ को कैसे समझाते हैं।
बिल्कुल, और यशाया का ये हिस्सा सच में इतिहास के पन्नों में एक बड़ा वैचारिक भूकंप लेकर आता है। डॉक्टर ओसवाल्ड का लेक्चर बहुत साफ कर देता है कि ये सिर्फ किसी पुराने साम्राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव और ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों को दिखाने वाला एक आईना है। शुरुआती अध्यायों को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया के अलग अलग शक्तिशाली देश जैसे बेबीलोन या मिस्र इतिहास का पहिया घुमा रहे हैं।
हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया की पूरी राजनीति उनके फैसलों के इर्द गिर्द घूम रही है।
सही कहा, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां अचानक से पूरी तस्वीर पलट जाती है।
अरे वाह।
अध्याय 24 में आकर ऐसा लगता है जैसे विश्व के राजनीतिक मंच से कोई बड़ा सा पर्दा उठा दिया गया हो,
हाँ,
और तब ये साफ हो जाता है कि इतिहास के मंच पर असली नियंत्रक कोई मानवीय राजा नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर है।
ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इंसान अक्सर दुनिया की उथल पुथल देखकर ये मान लेता है कि सत्ता पूरी तरह से इंसान के हाथ में है।
बिल्कुल,
और यहाँ पाठ बहुत जोर देकर स्थापित करता है कि ईश्वर सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला कोई असहाय दर्शक नहीं है।
नहीं।
मतलब वो स्वर्ग में बैठ के ये नहीं सोच रहा कि अरे अब इंसानों ने ये चाल चल दी तो मुझे क्या करना चाहिए।
एकदम सही, वो रिएक्टिव नहीं है,
हाँ,
बल्कि वो इतिहास का मुख्य और सक्रिय संचालक है।
लेकिन यहीं पर ना दर्शन शास्त्र का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है।
कौन सा सवाल?
मतलब अगर सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, तो क्या ये दुनिया पूरी तरह से नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म में फंसी हुई है? मतलब क्या मेरा ये पेंसिल उठाना भी पहले से तय है?
ये बहुत ही जटिल विरोधाभास है।
हाँ, क्योंकि अगर इतिहास का हर पन्ना पहले से लिखा जा चुका है, तो फिर इंसान के पास आजादी या फ्री विल कहाँ बची? और अगर इंसान के पास पूरी आजादी है, तो ईश्वरीय सत्ता का क्या मतलब रह गया?
इसी सटीक सवाल ने सदियों से दार्शनिकों को उलझाए रखा है, और डॉक्टर ओसवाल्ड इसे बहुत ही संतुलन के साथ समझाते हैं।
अच्छा, तो सच्चाई क्या है?
सच्चाई इन दोनों चरम सीमाओं के बीच में कहीं मौजूद है। देखिए, इसे समझने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे GPS नेविगेशन सिस्टम का उदाहरण लिया जा सकता है।
GPS? दिलचस्प है।
हाँ, GPS में एक अंतिम गंतव्य या डेस्टिनेशन पहले से तय कर दिया जाता है। वो गंतव्य निश्चित है, वो नहीं बदलेगा, लेकिन रास्ते में अगर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कोई गलत मोड़ ले लेता है।
अच्छा, तो सिस्टम उस रास्ते को दोबारा कैलकुलेट करता है।
बिल्कुल, रीकैलकुलेट करता है, यानी अंतिम परिणाम पूरी तरह से तय है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बदला जा सकता है।
अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार एनालॉजी है। मतलब ईश्वर की एक अंतिम योजना है जो पूरी होकर रहेगी, लेकिन उस गंतव्य तक पहुंचने के बीच के सफर में इंसानों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने चुनावों से उस रास्ते को बदल सकें।
सही कहा, इंसान उस अंतिम योजना को रद्द तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें लगने वाले समय या उस सफर के दर्द और खुशी को अपने फैसलों से प्रभावित जरूर कर सकता है।
लेकिन अगर मानवीय चुनाव इतने ज्यादा मायने रखते हैं, तो एक गंभीर सवाल उठता है। जब इंसान सामूहिक रूप से गलत चुनाव करते हैं, तब उस रास्ते का क्या होता है?
ये एक बहुत ही अहम बिंदु है।
क्योंकि यशाया के इस हिस्से में तो पूरी दुनिया के एक बेहद भयानक विनाश का दृश्य उकेरा गया है। एक ऐसा विनाश जहां अमीर गरीब मालिक दास सब एक समान स्तर पर आ जाते हैं, कोई नहीं बचता।
यहीं पर कारण और परिणाम का सिद्धांत बहुत ही अनोखे तरीके से सामने आता है। डॉक्टर ऑज़वाल्ड बताते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में इसे पेश करने के दो मुख्य तरीके होते हैं,
कॉजेशन और सब्सटेंसिएशन।
कॉजेशन तो शायद वो सीधा तरीका है जिसकी आम इंसान को आदत होती है, राइट?
हाँ बिल्कुल। कॉजेशन में कारण पहले आता है और परिणाम बाद में। जैसे अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके परिणाम स्वरूप उसे सजा मिलेगी।
लेकिन सब्सटेंसिएशन इससे उल्टा काम करता है ना?
एकदम उल्टा। सब्सटेंसिएशन में परिणाम को पहले रखा जाता है और कारण को बाद में। यशाया जानबूझकर इसी दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करता है।
अच्छा, तो मतलब पाठ में पहले दुनिया के बर्बाद होने का भयानक चित्र खींचा गया है ताकि पढ़ने वाला उस डरावने परिणाम को गहराई से महसूस करे।
बिल्कुल। और जब उसके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा विनाश क्यों हुआ, तब जाकर उसे कारण बताया जाता है। उसे बताया जाता है कि ये प्रकृति इसलिए श्रापिक है क्योंकि इंसानों ने नियमों को तोड़ा है। परिणाम को पहले रखने से विनाश का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और जो कारण बताया गया है वो भी बहुत ध्यान खींचने वाला है।
जी, विनाश की वजह कोई मनमाना ईश्वरीय क्रोध नहीं है, बल्कि ये है कि इंसानों ने बुनियादी नियमों की अनदेखी की।
हाँ, यही हिब्रू भाषा का वो अहम शब्द आता है, तोरा। अक्सर जब तोरा की बात होती है तो दिमाग में एक सख्त कानूनी ढांचे की तस्वीर बन जाती है। एक ऐसा कानून जहां कोई सजा देने के लिए तैयार बैठा है।
बिल्कुल।
लेकिन डॉक्टर ओज़वाल्ड के लेक्चर से ये स्पष्ट होता है कि तोरा का असली मतलब कोई सजा देने वाला कानून नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है निर्देश या इंस्ट्रक्शन।
और ये अनुवाद का वो बारीक अंतर है जो नजरिए को पूरी तरह बदल देता है।
हाँ, मतलब ईश्वर ने ये पाबंदियां मजा किरकिरा करने के लिए नहीं बनाई। ये किसी मशीन के इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है।
सही कहा।
जैसे अगर कोई एक बहुत महंगी कार खरीदे तो उसका मैनुअल स्पष्ट बताता है कि इंजन में पेट्रोल डालना है, पानी नहीं। ये कोई अत्याचार नहीं है, बल्कि मशीन को सही तरीके से चलाने का विज्ञान है।
और जब इंसान जानबूझकर इस मैनुअल को अनदेखा करता है तो लेक्चर में इसके लिए ट्रांसग्रेशन यानी उल्लंघन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका लैटिन मूल अर्थ बहुत ही दिलचस्प है।
हाँ, इसका अर्थ है बाड़ फांगना। ये मनोविज्ञान के काफी करीब लगता है।
बिल्कुल, ये एकदम छोटे बच्चों जैसा है।
हाँ, अगर किसी बच्चे को एक खूबसूरत मैदान में छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि पूरे मैदान में खेलो, बस उस एक छोटी सी बाड़ के पार मत जाना,
तो बच्चे के लिए दुनिया का सबसे जरूरी काम उस बाड़ को फांदना ही बन जाता है।
एकदम सही। इंसान के अंदर एक अजीब सी फितरत है कि जो चीज मना की गई है उसे लगता है असली आजादी उसी के पीछे है।
और जो पूरा समाज इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को कूड़ेदान में डाल देता है और बाड़ फांदने लगता है, तो अंतिम परिणाम क्या होता है? समाज में आजादी नहीं आती, बल्कि गहरा खालीपन आ जाता है।
नियमों की टूटने से अराजकता फैलती है जो सिर्फ दर्द लाती है।
और इसी दर्द को भुलाने के लिए इंसान हताश होकर नकली खुशी की तराश में भागता है। यशाया के पाठ में शराब से मिलने वाली खुशी और सच्ची खुशी के बीच एक बहुत तीखा कंट्रास्ट दिखाया गया है।
हाँ, क्योंकि शराब की खुशी असल में खुशी है ही नहीं, वो तो बस वास्तविकता से भागने की एक कोशिश है।
और जब दुनिया वीरान हो जाती है तो वो भूलने का साधन भी छिन जाता है। इसके विपरीत सच्ची खुशी का स्रोत बहुत अलग है। यहाँ डॉक्टर ऑज़वाल्ड एक और गहरे हिब्रू शब्द का जिक्र करते हैं, कावोद।
कावोद, जिसका मतलब सिर्फ आभा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है वजन, महत्व या वास्तविकता।
जी, ईश्वर की महिमा या कावोद खुशी का कारण इसलिए है क्योंकि ईश्वर का चरित्र अच्छा, सच्चा और न्यायपूर्ण है। जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड का रचयिता कोई क्रूर तानाशाह होता तो उसकी वास्तविकता का सामने आना बहुत डरावना होता।
हाँ, तब तो खुशी नहीं बल्कि एक खौफनाक सन्नाटा होता। लेकिन क्योंकि वो सत्य है, इसलिए उसकी वास्तविकता सबसे बड़ी खुशी का कारण बनती है।
बिल्कुल।
और इस विनाश के बाद बचने वाले लोगों की स्थिति को समझाने के लिए ना, लेक्चर में जैतून के पेड़ की एक बहुत मार्मिक एनालॉजी दी गई है।
हाँ, वो पेड़ का उदाहरण बहुत शक्तिशाली है।
मतलब जब किसान फसल काट लेते हैं तो पेड़ एकदम खाली हो जाता है, बस उसकी सबसे ऊंची टहनी पर, जहां किसी का हाथ नहीं पहुंचता, एक या दो जैतून बच जाते हैं।
फैसले के बाद की दुनिया को बिल्कुल इसी तरह चित्रित किया गया है, एक छांट चुका समाज जहां मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं।
ये बहुत उदास तस्वीर है जो दिखाती है कि बाड़ फांदने की कीमत कितनी भारी हो सकती है।
ये सन्नाटा डरावना जरूर है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है।
अच्छा?
हाँ, इस भयंकर विनाश के ठीक बाद अध्याय 25 में एक ऐसा वैचारिक बदलाव आता है जो चमत्कार से कम नहीं है।
न्याय की कठोरता के बीच एक नई उम्मीद दिखाई देती है।
और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उद्धार किसी एक विशिष्ट देश के लिए नहीं है, ये दुनिया के सभी लोगों के लिए है।
यही ईशाया की सबसे बड़ी खूबी है।
मतलब एक प्राचीन ग्रंथ जो अक्सर एक विशिष्ट कबीले की बात करता है, उसमें इतनी बड़ी सार व भौविक बात का होना सच में हैरान करने वाला है।
यहाँ अतिशोक्ति या हाइपरबोले का संतुलित इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह न्याय पूरी दुनिया पर आ रहा था, उसी तरह यहाँ मोक्ष भी पूरी दुनिया के लिए है। पाठ घोषणा करता है कि ईश्वर मृत्यु को हमेशा के लिए निगल लेगा और सभी के आंसू पोंछ देगा।
अरे वाह, ये दिखाता है कि अंतिम लक्ष्य विनाश नहीं बल्कि पूर्ण उद्धार है। और जब इस उद्धार तक पहुंचने की बात आती है तो लेक्चर में इंतजार करने की कला का बहुत गहराई से जिक्र है।
जी, इंतजार करना बहुत जरूरी विषय है। यहाँ
हिब्रू भाषा में इंतजार के लिए कई शब्द हैं, जैसे बाजा, कावा और हाका। आज की तेज दुनिया में इंतजार का मतलब बहुत नकारात्मक हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई बस स्टॉप पर थका हारा बैठा है।
लेकिन हिब्रू का बाजा शब्द इस तरह का लाचार इंतजार बिल्कुल नहीं है।
एकदम नहीं, इसे आत्मविश्वास से भरी उम्मीद या कॉन्फिडेंट एंटिसिपेशन कहना ज्यादा सही होगा। लेक्चर में एक कामनी थी जिसने इसे बहुत शानदार तरीके से स्पष्ट किया। एक महिला अस्पताल के वेटिंग रूम में बैठी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और लग रहा है कि उनके पति की मृत्यु होने वाली है।
जी, वो बहुत ही मार्मिक कहानी है।
हाँ, परिवार के बाकी सदस्य रो रहे हैं, लेकिन उस महिला के चेहरे पर एक शांति है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं ईश्वर का इंतजार कर रही हूँ। ये हार मानना नहीं था बल्कि एक गहरा भरोसा था।
ये बाजा का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। ये हमें यशाया के ही एक और पात्र राजा अहाज की याद दिलाता है।
राजा अहाज, उन्होंने क्या किया था?
अहाज इसका ठीक उल्टा था। जब उसके राज्य पर संकट आया तो वो इंतजार नहीं कर सका। उसे लगा कि ईश्वर बहुत देर लगा रहा है, इसलिए उसने अपनी सीमित मानवीय बुद्धि से समस्या को जबरदस्ती सुलझाने की कोशिश की।
अच्छा, और यही इंतजार करने का सबसे मुश्किल हिस्सा है, अपनी खुद की टीम लाइन को छोड़ना, ये स्वीकार करना कि ब्रह्मांड इंसान की घड़ी के हिसाब से नहीं चलता।
बिल्कुल, जबरदस्ती अपने सीमित संसाधनों से चीजों को ठीक करने की जिद छोड़ना ही असली इंतजार है। लेकिन जो लोग इंतजार करने से मना कर देते हैं और खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं, उनका क्या होता है?
ये भी एक बड़ा सवाल है।
यशाया इसे मोआब राज्य के उदाहरण से समझाता है। मोआब का घमंड उसे आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं ले जाता, बल्कि एक जानवरों के बाड़े की गंदगी में औंधे मुंह गिरा देता है। पाठ में वर्णन है कि वो उस बदबूदार गंदगी में तैरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता है।
ये दृश्य अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये अहंकार की असलियत को बेनकाब कर देता है। घमंड इंसान को सबसे निचले स्तर की गंदगी में धकेल देता है।
ये रूपक स्पष्ट करता है कि ईश्वरीय कृपा का दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन शर्त है पूर्ण भरोसा और अपने अहम का त्याग।
इसी अहंकार और ब्रह्मांड के नियमों को न समझने की बात को आज के संदर्भ में देखने के लिए ना, लेक्चर का एक उदाहरण बहुत ही मारक है, इलेक्ट्रिकल आउटलेट और पेपर क्लिप की एनालॉजी।
हाँ, ये एनालॉजी मेरी पसंदीदा है।
अक्सर जब इंसान प्रकृति के बुनियादी नियमों को तोड़ता है तो उसे लगता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो वो इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर कोई गुस्सैल तानाशाह है,
जबकि असलियत में ये किसी व्यक्तिगत गुस्से का मामला है ही नहीं।
बिल्कुल नहीं, ये तो पूरी तरह से भौतिकी के नियमों की तरह काम करता है। अगर कोई व्यक्ति एक धातु के पेपर क्लिप को सीधा करे और उसे दीवार के बिजली सॉकेट में डाल दे तो उसे भयंकर करंट लगेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो करंट इसलिए लगा क्योंकि बिजली उस व्यक्ति से नफरत करती है?
बिल्कुल नहीं,
करंट इसलिए लगा क्योंकि वो व्यक्ति उस काम के लिए बना ही नहीं था। खुद को असीमित सृष्टिकर्ता के बराबर समझना उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के सीधे खिलाफ जाना है। ये कोई ईश्वरीय अहंकार नहीं है बल्कि वास्तविकता का एक अटल नियम है।
ये एनालॉजी पूरे विश्लेषण का बेहतरीन निचोड़ है। जब इंसान उस मैनुअल, उस तोरा के खिलाफ जाकर खुद को भगवान समझने की भूल करता है तो वो केवल अपना ही नुकसान करता है।
तो अगर आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ये दुनिया बेतरतीब नहीं चल रही है। इसका एक मास्टर प्लान है। जीवन जीने का एक स्पष्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो सजा देने के लिए नहीं बल्कि आजादी से जीने का तरीका बताने के लिए है।
और सच्ची खुशी भी वास्तविकता से गहराई से जुड़ने में है।
सही कहा, और शायद सबसे बड़ी बात सब कुछ कंट्रोल करने की जिद को छोड़ना और पूरे आत्मविश्वास के साथ इंतजार यानी बाजा करना ही सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है।
ये एक ऐसी समझ है जो भले ही प्राचीन ग्रंथों से आई हो, लेकिन आज के समय के लिए ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है।
हाँ, और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज के सफर को खत्म करने से पहले हम अपने सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे।
जी बिल्कुल।
आज के इस 5G इंस्टेंट डिलीवरी वाली दुनिया में, जहां हर मुश्किल का समाधान तुरंत स्मार्टफोन पर चाहिए, क्या इंसानियत बाजा यानी वो शांत और आत्मविश्वास भरा इंतजार करने की क्षमता पूरी तरह से खोती जा रही है?
ये तो सोचने वाली बात है।
और अगर ऐसा है तो हम अपनी जिंदगी के किन हिस्सों में जबरदस्ती अपनी मर्जी चलाकर ब्रह्मांड के सॉकेट में पेपर क्लिप डालने की कोशिश कर रहे हैं?